अनिवार्य ओपनिंग नैरेशन। एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम गोता लगा रहे हैं 1920 के दशक के सैन फ्रांसिस्को की धुंधली रहस्यमयी गलियों में। और हमारे साथ हैं डैशिल हैमेट का वो उपन्यास जिसने अमेरिकी जासूसी कहानियों का रुख ही मोड़ दिया, द मॉल्टीज फॉल्कन।
बिल्कुल, और हैमेट वो कोई सिर्फ किताबी लेखक नहीं थे।
हाँ, सही कहा, वो पहले पिंकर्टन डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर चुके थे 8 साल।
8 साल, सोचिए वो अनुभव, वो उनके लेखन में एक तरह की सच्चाई, एक सख्ती लाता है।
बिल्कुल, जिसने वो हार्ड बॉइल्ड स्टाइल को जन्म दिया।
हाँ, हार्ड बॉइल्ड मतलब एकदम सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं, कम शब्दों में गहरी चोट।
उनका असर तो रेमंड चैंडलर जैसे लेखकों पर भी साफ दिखता है ना।
चैंडलर, हेमिंग्वे, कई बड़े नाम हैं। और ये उपन्यास द मॉल्टीज फॉल्कन, ये आया 1929-30 के दौर में। अमेरिका के लिए वो एक अजीब वक्त था, शहर बढ़ रहे थे, प्रोहिबिशन का जमाना था, नैतिक मूल्य बदल रहे थे
और महामंदी बस दरवाजे पे दस्तक दे रही थी।
सही, तो वो पूरा माहौल, वो बेचैनी, वो उपन्यास में सांस लेती है।
तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी उपन्यास पर है। हम देखेंगे कि हैमेट ने कैसे एक जासूसी कहानी के फ्रेमवर्क में लालच, धोखा और एक निजी नैतिक कोड के बड़े सवाल उठाए।
और ये सिर्फ हैमेट की बेस्ट राइटिंग नहीं मानी जाती, ये हार्ड बॉइल्ड जॉनर का मतलब शिखर है।
और जॉन हस्टन की 1941 वाली फिल्म, उसने तो इसे अमर ही कर दिया, फिल्म नोयर के लिए एक तरह से रास्ता बनाया।
बिल्कुल क्लासिक। तो कहानी शुरू कहां से होती है?
कहानी हमें ले चलती है सैन फ्रांसिस्को, प्राइवेट डिटेक्टिव सैम स्पेड और उसके पार्टनर माइल्स आर्चर के ऑफिस। एक शाम एक बहुत खूबसूरत लेकिन परेशान सी दिखने वाली औरत आती है, अपना नाम बताती है, मिस वांडेली।
मिस वांडेली, नाम ही कहानी जैसा लगता है।
हाँ, और उसकी कहानी भी वैसी ही है। वो कहती है कि उसकी बहन एक खतरनाक आदमी फ्लॉयड थर्सबी के साथ भाग गई है और उसे डर है कि बहन खतरे में है। वो चाहती है कि डिटेक्टिव थर्सबी पर नजर रखें।
और आचा, वो शायद उसकी खूबसूरती या कहानी से प्रभावित हो जाता है।
हाँ बिल्कुल, वो कहता है मैं खुद ये काम करूंगा। और उसी रात
कुछ गड़बड़ हो जाती है।
हाँ, आर्चर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और कुछ ही देर बाद वो आदमी थर्सबी, वो भी मारा हुआ मिलता है।
ओहो, तो मामला एकदम से गंभीर हो गया।
बहुत ज्यादा। स्पेड समझ जाता है कि ये किसी भागी हुई बहन का मामला नहीं है, ये कुछ और ही है, बहुत ज्यादा खतरनाक।
अब ये सिर्फ एक केस नहीं, उसके पार्टनर की मौत का सवाल बन गया।
और इस सबके केंद्र में क्या है, वो चीज जिसके लिए सब हो रहा है?
वो है द मॉल्टीज फाल्कन।
अच्छा, वो मशहूर फाल्कन।
हाँ,
सोने और कीमती पत्थरों से जड़ी एक बाज की मूर्ति, 16वीं सदी की।
16वीं सदी?
16वीं सदी, इसका मतलब इसका इतिहास भी होगा कुछ,
किसी भी हद तक।
तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आर्चर को किसने मारा, उपन्यास एक गहरा सवाल उठाता है।
क्या?
कि ऐसी दुनिया में जहां हर कोई झूठ बोल रहा है, जहां सच की कोई कीमत नहीं, जहां टिके रहने के लिए चालाकी ही सब कुछ है, वहां कोई इंसान अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सच्चाई कैसे बचाए?
ये तो बड़ा सवाल है।
और सैम स्पेड इसी कश्मकश में फंसा है। एक तरफ है मिस वांडेली, जिसका असली नाम बाद में पता चलता है ब्रिजिट ओशॉग्नेसी है, और जिसके लिए स्पेड के मन में शायद एक खिंचाव है।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ है अपने मारे गए पार्टनर के लिए एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी, एक अनकहा फर्ज और उसका अपना एक निजी कोड।
किरदारों की बात करें तो स्पेड तो है ही, और कौन है अहम?
ब्रिजिट ओशॉग्नेसी, वो फेम फिटेल।
फेम फिटेल यानी वो खतरनाक औरत जो अपनी खूबसूरती को हथियार बनाती है।
बिल्कुल। फिर है कैस्पर गटमैन, मोटा सा हसमुख दिखने वाला मास्टरमाइंड,
द फैट मैन।
हाँ वही, जिसके लिए फाल्कन एक जुनून है। और उसके दो साथी, एक है जोल काइरा, थोड़ा अजीब, इत्र लगाने वाला
और घबराया हुआ सा लगता है शायद।
हाँ, और दूसरा है विल्मो कुक, गटमैन का जवान गुस्सेल गनमैन।
किरदारों का अच्छा खासा जमावड़ा है।
चलो सैम स्पेड को थोड़ा और समझते हैं, उसे क्या कहें, हीरो या एंटी हीरो?
हैमिट ने उसे सुनहरे बालों वाला शैतान कहा है शायद।
हाँ, वो सख्त है, दुनिया को शक की निगाह से देखता है, जिसे अंग्रेजी में सिनिकल कहते हैं, भावनाओं से जैसे दूर रहता है।
उसकी अपनी एक दुनिया है, अपने नियम है।
बिल्कुल, उसका अपना एक निजी नैतिक कोड है, शायद बाहर की दुनिया की नैतिकता से अलग।
क्या है वो कोड?
वो है प्रोफेशनल ईमानदारी, अपने पार्टनर के लिए कुछ करना, चाहे उसे पसंद करते हों या नहीं, खुद को बचाना, और सबसे जरूरी, किसी के लिए बेवकूफ नहीं बनना। आई वॉन्ट प्ले द सैप फॉर यू, ये उसकी लाइन है।
मतलब वो किसी भी कीमत पर धोखा नहीं खाएगा।
सही।
उसकी कहानी किसी बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि उसके इस कोड की परीक्षा है।
और आचुर की पत्नी ईवा के साथ उसके रिश्ते का क्या, वो भी कहानी में आता है?
हाँ, वो भी एक परत जोड़ता है, शायद थोड़ा अपराध बोध भी।
जी।
लेकिन अंत में जब वो ब्रिगेड को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है,
जबकि वो शायद उसे पसंद करता है।
हाँ, ये उसके प्रोफेशनल कोड की जीत है, उसकी निजी इच्छा पर। वो अकेला रह जाता है, शायद पहले से भी ज्यादा सिनिकल,
लेकिन अपने उसूलों पर खड़ा। अब ये जीत है या हार, ये पाठक सोचे।
और ब्रिगेड, वो फेम फिटेल,
वो अपनी खूबसूरती, अपनी लाचारी, इन सबको हथियार की तरह इस्तेमाल करती है।
लेकिन धीरे धीरे उसकी झूठ की परतें उधड़ती हैं।
पता चलता है कि वो कितनी स्वार्थी और क्रूर हो सकती है।
हाँ, फॉल्कन का लालच उसे अंधा कर देता है। स्पेड के साथ उसका रिश्ता भी एक खतरनाक खेल जैसा है, खिंचाव है पर गहरा शक भी।
वो स्पेड के कोड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल, वो स्पेड को उसकी हदों तक ले जाती है।
और कैस्पर गटमैन, द फैट मैन,
वो सिर्फ एक लालची विलन नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, बात करने में माहिर, हसमुख लगता है,
लेकिन अंदर से उतना ही बेरहम।
हाँ, फॉल्कन उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं है, वो 17 साल से उसके पीछे है। ये एक जुनून है, जैसे जिंदगी का मकसद।
लोग उसके लिए बस मोहरे हैं,
या तो मोहरे या रास्ते का रोड़ा। ये दिखाता है कि जुनून की हद तक गया लालच इंसान को कैसे खोखला कर देता है।
और उसके वो साथी काहिरा और विल्मा,
वो गटमैन के हाथ के खिलौने जैसे हैं। काहिरा थोड़ा दिखावटी है, भरोसे लायक नहीं। विल्मर वो टिपिकल नौजवान गुंडा है जो बंदूक के जोर पर रॉब जमाना चाहता है।
और स्पेड से चिढ़ता है
बहुत, क्योंकि स्पेड उसे बच्चा समझता है, उसे नीचा दिखाता है। ये दोनों दिखाते हैं कि क्राइम की दुनिया कितनी धोखेबाज है, वफादारी सिर्फ मतलब की।
और अंत में विल्मर ही बलि का बकरा बनता है।
हाँ, गटमैन उसे अपने फायदे के लिए कुर्बान कर देता है।
इन सबके बीच कोई सामान्य इंसान भी है?
हाँ, एफी पेरिन, स्पेड की सेक्रेटरी, वफादार। वो जैसे कहानी की नैतिक धुरी है।
स्पेड पर उसका भरोसा बना रहता है।
हाँ, काफी हद तक। भले ही वो स्पेड के तरीकों को हमेशा ना समझे, वो नॉर्मल दुनिया, इंसानियत की प्रतीक है, स्पेड का शायद अकेला सच्चा मानवीय रिश्ता।
और अंत में उसकी निराशा स्पेड के अकेलेपन को और गहरा करती होगी।
बिल्कुल। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? शुरुआती हत्याओं के बाद
पुलिस, खासतौर पर लेफ्टिनेंट डंडी, स्पेड पर शक करने लगती है, ईवा आर्चर के साथ उसके रिश्ते को लेकर।
तो स्पेड अब दो तरफ से फंसा है, कानून और वो लोग जो फॉल्कन के पीछे हैं।
हाँ, उसे ये जाल सुलझाना ही होगा, अपनी जान बचाने के लिए भी।
और जाल उलझता जाता है।
बिल्कुल। ब्रिगेड अपना असली नाम बताती है, पर झूठ बोलना बंद नहीं करती। फिर जोल काहिरा स्पेड के ऑफिस आता है
और फॉल्कन का जिक्र करता है।
हाँ, काले पक्षी के मूर्ति के लिए $5,000 ऑफर करता है। स्पेड समझ जाता है कि तार जुड़ रहे हैं, वो काहिरा को आसानी से काबू कर लेता है।
अब स्पेड बीच में है, ब्रिगेड, काहिरा, गटमैन, पुलिस, सबके बीच।
हाँ, वो सबके साथ खेल रहा है, झूठ के इस ढेर से सच निकालने की कोशिश कर रहा है।
फिर उसकी मुलाकात गटमैन से होती है।
हाँ, द फैट मैन। गटमैन बड़े आराम से फाल्कन का पूरा इतिहास सुनाता है, कैसे नाइट्स ऑफ माल्टा ने स्पेन के राजा को भेजा था, कैसे समुद्री डाकुओं ने लूटा, सदियों से कैसे लोग इसे ढूंढ रहे हैं,
और ये भी कि वो खुद 17 साल से इसके पीछे है।
हाँ, वो स्पेड को लालच देता है, धमकी देता है, सब कुछ आजमाता है। यही स्पेड को अंदाजा होता है कि ये जुनून कितना गहरा है।
इसी दौरान स्पेड ब्रिगेड को वो अजीब सी कहानी सुनाता है, फ्लिटक्राफ्ट वाली।
हाँ, फ्लिटक्राफ्ट पैराबल, एक आदमी की कहानी जो मौत के मुंह से बचकर अपनी जिंदगी बदलता है, भाग जाता है,
लेकिन कुछ साल बाद फिर वैसे ही जिंदगी जीने लगता है।
बिल्कुल। ये जैसे स्पेड का दुनिया को देखने का नजरिया है कि किस्मत भले ही कुछ भी करे, इंसान अपनी आदतों का गुलाम है, बदलता नहीं। फिर कहानी में टेंशन और बढ़ती है जब ला पालोमा जहाज का कप्तान जैकोबी मरता हुआ स्पेड के ऑफिस पहुंचता है।
उसे गोली लगी होती है।
हाँ, वो गिरता है, मर जाता है, लेकिन मरने से ठीक पहले एक बंडल स्पेड को देता है, अखबार में लिपटा हुआ,
और उसमें है
माल्टीज फॉल्कन।
तो अब फाल्कन स्पेड के पास है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में।
हाँ, वो सबको अपने अपार्टमेंट बुलाता है। ब्रिजिट, गटमैन, काहिरा, विल्मर, ये स्पेड के माइंड गेम्स का क्लाइमैक्स है।
वो फाल्कन को सामने रखकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करता है।
उन्हें पुलिस से बचने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए। स्पेड ठंडे दिमाग से विल्मर का नाम आगे करता है
और गटमैन मान जाता है।
हाँ, बड़े नाम के लालच में वो विल्मर को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है।
फिर गटमैन स्पेड को पैसे देता है,
$10,000, और फिर वो सब मिलकर फाल्कन को खुरचते हैं उसकी असली चमक देखने के लिए।
फिर
और पता चलता है कि वो नकली है, शीशे का बना हुआ।
क्या इतनी भाग दौड़, खून खराबा, सब एक नकली चीज के लिए।
हाँ, यही तो कहानी का आयरन है। गटमैन एक पल को टूट सा जाता है, पर फौरन संभल जाता है। कहता है खोज जारी रहेगी इस्तांबुल में, और वो अपने साथियों के साथ चला जाता है।
स्पेड अब अकेला रह जाता है।
हाँ, ब्रिगेड और उस नकली फाल्कन के साथ।
फाल्कन का खेल खत्म, लेकिन आर्चर की हत्या का मामला अभी बाकी है।
अब स्पेड का पूरा फोकस ब्रिगेड पर।
हाँ, वो एक एक करके उसके सारे झूठों की परतें खोलता है। पहली रात क्या हुआ था उसका सच सामने लाता है,
और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आर्चर को ब्रिगेड नहीं मारा था।
हाँ, ये सोचकर के इल्जाम थर्सबी पर जाएगा। स्पेड के सवालों के सामने ब्रिगेड टूट जाती है, कबूल कर लेती है।
उसे लगता है स्पेड उसे बचा लेगा।
हाँ, वो गिड़गिड़ाती है, प्यार का वास्ता देती है, पर स्पेड का फैसला अटल है।
उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा।
हाँ, वो कहता है ये बदला नहीं है, क्योंकि वो आर्चर को पसंद भी नहीं करता था। ये उसके कोड का सवाल है।
एफी उसे देखती है शायद निराशा से। स्पेड जीत गया है, पर एकदम अकेला।
तो इस पूरी कहानी से क्या बड़े विषय, क्या थीम्स निकल कर आते हैं?
सबसे पहला तो है लालच, लालच का जहर। वो फाल्कन तो बस एक बहाना है, एक मैकगफिन।
हाँ, असली चीज तो वो है जो लालच लोगों के साथ करता है, जैसे गटमैन का जुनून।
बिल्कुल, कैसे वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है।
दूसरा बड़ा मुद्दा है सच और झूठ का। इस दुनिया में सच जैसे मिलता ही नहीं,
या मिलता है तो बहुत महंगा पड़ता है। ब्रिगेड तो झूठ की मूर्ति है, और स्पेड वो भी सच का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है।
तो शायद सच ढूंढना उतना जरूरी नहीं जितना झूठ से निपटना सीखना है।
हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। फिर है वो हार्ड बॉइल्ड कोड, स्पेड का अपना निजी कोड,
जो इस नैतिक अंधेरे में उसका एकमात्र सहारा है।
हाँ, ये अच्छा होने के बारे में नहीं है, ये प्रोफेशनल होने, आत्मनिर्भर होने, धोखा ना खाने के बारे में है।
और ब्रिजिट को पुलिस को सौंपना, इसी कोड की कीमत चुकाना है।
बिल्कुल, फिर एक तरह की मर्दानगी भी है स्पेड में। भावनाओं से परे, सिनिकल, हमेशा कंट्रोल में।
महिलाओं के साथ उसके रिश्ते भी कंट्रोल और शक पर आधारित लगते हैं।
हाँ, और अंत में वो नकली फाल्कन, ये कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है
कि जिस चीज के लिए इतना सब कुछ हुआ वो खुद एक धोखा थी।
ये दिखाता है कि हमारी इच्छाएं, हमारे सपने अक्सर किसी वहम पर टिके होते हैं। असली चीज शायद वो सपना ही है, वो इच्छा ही है, न कि वो चीज।
जैसे स्पेड अंत में कहता है, The stuff that dreams are made of.
हाँ, वो सामान जिससे सपने बनते हैं।
हैमेट की लिखने की शैली भी तो कमाल की है, एकदम ऑब्जेक्टिव, कैमरा की तरह।
हाँ, वो हमें ये नहीं बताते कि स्पेड क्या सोच रहा है, हमें सिर्फ उसके एक्शन दिखते हैं, उसके डायलॉग सुनाई देते हैं।
हमें खुद अंदाजा लगाना पड़ते हैं, इससे स्पेड और रहस्यमयी लगता है।
बिल्कुल, और डायलॉग कितने सटीक और पैने हैं, कम शब्दों में ज्यादा बात।
हर किरदार की अपनी आवाज है, ब्रिजिट की मिन्नतें, गटमैन का वो भारीपन, स्पेड का कटाक्ष,
और वो माहौल, सैन फ्रांसिस्को का धुंध, बारिश, अंधेरी गलियां, वो सब कहानी के मूड को सेट करते हैं।
फाल्कन का प्रतीकवाद, फ्लिटक्राफ्ट पैराबल, ये सब कहानी को परतें देते हैं।
कुछ डायलॉग्स तो याद रह जाते हैं, जैसे स्पेड का वो कहना कि जब किसी आदमी का पार्टनर मारा जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो कुछ करेगा।
ये उसका प्रोफेशनल कोड है, भावना से ऊपर।
और ब्रिगेड से उसका कहना, मैं तुम्हारे लिए मूर्ख नहीं बनूंगा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उसकी पूरी फिलॉसफी है
कि कमजोर नहीं पड़ना है, धोखा नहीं खाना है।
और अंत में वो लाइन, द स्टफ दैट ड्रीम्स आर मेड ऑफ, शेक्सपियर का जिक्र करते हुए उस नकली फाल्कन के बारे में।
पूरी कहानी का सार जैसे कि इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है, शायद सिर्फ एक सपने के।
इस उपन्यास को पढ़कर कैसा महसूस होता है? थोड़ा बेचैन करने वाला अनुभव है शायद।
हाँ, क्योंकि कोई आसान जवाब नहीं मिलता, कोई साफ हीरो नहीं है। स्पेड जीतता है, पर वो जीत खोखली सी लगती है, वो अकेला रह जाता है।
एक तरह का मोह भंग महसूस होता है।
उसने अपना कोड बचा लिया, पर क्या कीमत चुकाई, शायद इंसानियत की।
लेकिन सैम, स्पेड का किरदार जहन में रह जाता है, एक ऐसे इंसान का प्रतीक जो इस भ्रष्ट दुनिया में अपने उसूलों पर टिका रहता है, चाहे वो उसूल कुछ भी हो।
ये सवाल छोड़ जाता है कि उसूलों की कीमत क्या है, क्या निजी कोड ही सब कुछ है।
ये सिर्फ एक डिटेक्टिव कहानी से कहीं ज्यादा है, ये मॉडर्न सोसाइटी की नैतिक जटिलताओं पर एक गहरी टिप्पणी है।
हैमेट ने एक पॉपुलर जॉनरा का इस्तेमाल करके इंसान के वजूद से जुड़े बड़े सवाल उठाए हैं,
और वो सवाल आज भी उतने ही मौजू है ना।
बिल्कुल, तो आखिर में हम यही सोचते रह जाते हैं कि स्पेड की वो अकेली जीत क्या वो वाकई जीत थी या अपने कोर्ट को बचाने में उसने कुछ और जरूरी चीज खो दी। अनिवार्य क्लोजिंग लाइन। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।